औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, वीकली प्रोग्राम मजलिसे उलमा अवर के साथ आपका मेज़बान सलमान हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम हर इतवार को 5 से 7 बजे के दरमियान पेश किया जाता है, जिसमें हम मजलिसे उलमा के शिया यूरोप के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। लास्ट प्रोग्राम जो हम आपकी खिदमत में पेश किए गए, उनमें हमने मजलिसे उलमा शिया यूरोप की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में और उनके कन्वेंशंस के बारे में और जो अपडेट्स पूरे यूके से मजलिसे उलमा के उलमा को हमने यहाँ पर दावत दी और वो यहाँ पर आके आपके सामने पेश करते हैं। आज भी हमारी कोशिश होगी कि हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर उनसे गुफ्तगू करें, क्योंकि जिस तरह आप जानते हैं कि आज इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की शहादत का भी दिन है, उस हवाले से भी तमाम मोमिनीन को और तमाम मुसलमान आलम को ताज़ियत व तसलियत अर्ज़ है अहले बैत टी वी की टीम की जानिब से तमाम मोमिनीन को। इसके अलावा जिस तरह के हम ईद कुर्बान की तरफ बढ़ रहे हैं और हज का एक बाबरकत और पुरमसरत मौका भी जो है वो भी नज़दीक तर है, इसके अलावा हम इसके अलावा जो ईद गदीर के दिन हैं और मुहर्रम की भी आमद आमद है, इस इन तमाम टॉपिक्स के हम मद्देनज़र रखते हुए इस पर गुफ्तगू की जाएगी। और आज हमारे साथ जो उलमा इकराम मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं मौलाना अज़मत अब्बास ज़ुहैरी साहिब, जो कि मजलिसे उलमा के मजलिसे उलमा शिया यूरोप के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मौलाना हसन अब्बास रिजवी साहिब, जो कि सेक्रेटरी फाइनेंस हैं मजलिसे उलमा शिया यूरोप के, और उनके साथ आज हमारी खसूसी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर एहसान साहिब, जो कि इमामिया काउंसिल के मरकज़ी कोआर्डीनेटर हैं। आप तमाम मेहमानान गिरामी को स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। और सबसे पहले इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से इस मौका पर आपको मैं ताज़ियत व तसलियत पेश करता हूँ अहले बैत टीवी की जानिब से।
शुक्रिया।
अगर सबसे पहले जो टॉपिक से मैंने जिक्र किया कि अभी हम गुफ्तगू आगे चल के करेंगे, ईद कुर्बान के हवाले से गुफ्तगू होगी और खुसूसी तौर पर हज के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं नाज़रीन की कोशिश नाज़रीन की इस जानिब तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहूँगा कि जिस तरह आज 5वें इमाम इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है, इस हवाले से बहुत कम गुफ्तगू की जाती है इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के सीरत के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से। तो आज हम इन उलमा इकराम का फ़ायदा उठाते हुए हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम इमाम की ज़िंदगी के हवाले से और उनकी शहादत के हवाले से जो हकायक हैं वो आप तक पहुँचाएँ। मौलाना अज़मत अब्बास साहिब, सबसे पहले आपसे ये सवाल करूँगा कि इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से अगर आप कुछ रोशनी डाल सकें।
शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका बहुत शुक्रिया अहले बैत की पूरी टीम का कि वाकई जिस तरह के नाम है इस टीवी का, इसी लिहाज से आप लोगों की कोशिश है कि अहले बैत अतहार की शहादत के अयाम हों या उनकी वलादत के अयाम हों, आप इस हवाले से जो सही कोशिश करते हैं खुदावंद मन्नान उसको अपनी बारगाह में इंशाल्लाह कबूल करे। सात ज़िलहज 114 हिजरी वाकयान इस पूरे महीने में एक बबरकत महीना है, इस लिहाज से कि इसमें हज है और खुद पैगम्बर अकरम और अहमद हार की ज़बान से इस महीने को माह विलायत भी कहा गया है। 18 ज़िलहज के जिसमें वाकया कदीर और इस्लाम की जो तकदीर और उसके जो आगे आने वाले दिन हैं उसके हद्दोखाल को पैगम्बर इस्लाम ने जिस अंदाज में अपनी उम्मत के सामने वाज़े किया, खुशी का दिन है, मोबाइल का दिन है, लेकिन इस महीने में 7 ज़िलहज का दिन वाकई एक दर्दनाक दिन है कि जिसमें हमारे 5वें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। और ये हमारा इफ्तिखार है कि खुदावंद मन्नान ने हमें दरे अहले बैत के साथ वाबस्ता किया है और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था, ताकीद फरमाई थी कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और उसी अहले बैत, और इस हवाले से ताकीद की और किसी मसलक का इस पर इख्तलाफ नहीं है कि अहले बैत के अतबार हवाले से पैगम्बर इस्लाम ने खसूसी ताकीद फरमाई कि अहले बैत अतहार का तुमने दामन नहीं छोड़ना और मैं इस हवाले से खसूसी सिफारिश करता हूँ। हमारा इफ्तिखार इस हवाले से है और हम वाकई बहुत अपने आप को खुशकिस्मत कहते हैं कि वो ज़माना भी हमें याद है कि जब किस तरह ज़ाहरी तौर पर जो कलमा गो थे पैगम्बर अकरम का कलमा पढ़ते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते थे, लेकिन अहले बैत अतहार की शहादतें भी उन्हीं लोगों के दरमियान वाक़ हुई और वो सबब बने। और हमारा इफ्तिखार इसमें है कि हम यानी अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों, अपने बच्चों की, उनकी हमें माय विलादत और उनके अगर कोई बुज़ुर्गान इस दुनिया से हमारे ख़ानदान के चले जाएं तो उनकी हमें याद नहीं रहती कि कब वो इस दुनिया से गए हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें हमारे दिलों में ये मोहब्बत एक खसूसियत अता की है कि हम अपनों को छोड़कर अपने प्यारों की जो वलाते हैं, उनके जो रहलत के दिन हैं, उनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती, लेकिन हमारा बच्चा बच्चा मुतवज्जो होता है कि जब कभी भी अहले बैत अतहार में से हमारे किसी इमाम या इस ख़ानदान इस्मत व तहारत के किसी और फ़र्द जली की शहादत हो या उनकी वलादत का दिन हो तो मुतवज्जो होते हैं लोग कि आज वलादत का दिन है, एक शहादत का दिन है। ये मामूली सी बात नहीं है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम 57 हिजरी में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। मशहूर रवायत के मुताबिक यकम रजबुल मरजब का दिन था, और इसके अलावा सफ़र के हवाले से भी तारीख है, लेकिन सन वलादत जो है वो 57 हिजरी है। तो इस लिहाज से हम देखें तो इमाम की ज़िंदगी की जो इब्तदा होती है वो बड़ी कर्बनाक सी इब्तदा है, यानी कि वाक़ करबला सन 61 हिजरी में रुनमा हुआ। उस वक्त इमाम की जो सन मुबारक थी वो 3 साल थी, यानी कि वो जो हम मसाइब सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो तमाम मसाइब इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने अपनी इस छोटी सी उम्र में बर्दाश्त किए, अपने बुज़ुर्गों के साथ वो खुद करबला का मंज़र अपनी आँखों से देखा, अपने जद बुज़ुर्गवार सैयद शहदा की शहादत को अपनी आँखों से देखा, और फिर वो असारत की पूरा तलख जो सफ़र था उसमें इमाम करबला, कूफा और शाम, ये तमाम मसाइब देखते रहे। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के उस वक्त के इमाम थे, जो उनके जुमलात मिलते हैं कि उनके दिल पर क्या गुज़र रही थी शाम के दरबार में, कूफा के दरबार में। तो हम देखें कि अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो ज़हरी सूरत हाल है उस हवाले से देखें, उनके दिल का ये हाल था, तो इन इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की उस नन्ही सी उम्र में इनके दिल पर वो क्या गुज़र रही होगी, वो दरबारों में जाना, वो बाज़ारों में किस तरह जो बेहरमती हुई अहले बैत अतहार की। तो इमाम की वो ज़िंदगी का एक कर्बनाक मरहला था। इमाम ने वो वक्त भी गुजारा, लेकिन इसमें एक और जो नुक्ता है जो यहाँ पर इमाम की विलादत के हवाले से जिसको ज़िक्र करना फ़ायदे थे खाली नहीं है, वो ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से कहा जाता है कि ये वाहिद पहले मौलूद हैं कि जो दोनों तरफ से, अपने वालदे ग्रामी की तरफ से भी और अपनी वालदा माजदा की तरफ से भी, इनका जो नसब है वो मिलता है मौलाए कायनात और बीबी फातिमा तुज़ारा सैयदत नसा अलैहिस्सलाम, यानी आपके वालदे बुज़ुर्गवार हैं हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिन इमाम अली अलैहिस्सलाम, और आपकी वालदा माजिदा जनाब फातिमा बिनते हसन बिन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। तो लहाजा आप यानी कि इस तरफ से जाएं वालद की तरफ से भी तो आपका नसब बीबी फातिमा तुज़ारा और मौलाए कायनात के साथ मिलता है, और वालदा की जानब से भी। आपके ज़माने में एक और नुक्ता है, तारीखी नुक्ता नज़र से हम देखते हैं कि जो उस वक्त के हुक्मरान थे, उमवी दौरे खिलाफत उस वक्त जारी था, मरवानी जो बिलखसूस उनकी ख़ास शनाख्त रही है खुद उमवी ख़ानदान में भी, उनके हुक्मरान वहाँ उस वक्त मौजूद थे। 4 हुक्मरान जो है वो काबिले ज़िक्र हैं इस हवाले से। वलीद बिन अब्दुल मलिक है, उसके अलावा जो है सुलमान बिन अब्दुल मलिक है, उमर बिन अब्दुल अजीज़ है, और उसके बाद जो है यजीद बिन अब्दुल मलिक है, और उसके बाद हशाम बिन अब्दुल मलिक है, जिस मलहून के ज़माने में इमाम अलैहिस्सलाम को ज़ैर जफा के ज़रिए शहीद किया गया। तो इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं। एक जो बहुत वाज़े पहलू है, हर इमाम यकीनन हम जब देखते हैं तो हमारे 12 इमामों में से हर एक इमाम अपने अपने उस वक्त के जो हालात थे उसके मुताबिक उनकी जो फ़ज़ाइल थे वो लोगों में पहचाने गए, यानी लोगों ने उनको देखा तो किसी एक उनवान से याद यानी ज़्यादा किया उनकी, जिस सिफत को यानी कि जिस सिफत का बुरूज हुआ, जलवा हुआ लोगों में भी पहचाने गए। ना सिर्फ ये कि दुश्मनों में दोस्तों में, बल्कि दोस्तों से अलावा खुद दुश्मनों ने भी इकरार किया। यहाँ पर एक नुक्ता है कि हम जिस तरह कहते हैं कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के जो अलकाब हैं उनमें से एक लकब है आपको बाकरुल अलूम कहा जाता है। ये बाकर अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब है यानी इल्म की जो पेचीदगियाँ हैं उनको हल करने वाला और इल्म को शिकाफ्ता करने वाला, इल्म की गुत्थियाँ सुलझाने वाला, अरबी ज़बान में उसको कहते हैं बाकर। तो यहाँ पर जो मैं नुक्ता बहुत अहम मेंशन करना चाहता हूँ ये है कि इन सफ़ात के अतबार से हमारे तमाम अइमा अतहार की ये सफ़ात हैं, लेकिन एक ज़माने में एक सिफत जो है वो एक बेहतर अंदाज में, चूँकि हालात ऐसे होते हैं किसी इमाम की एक सिफत वाजे होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे अइमा अतहार वो नहीं थे। मसलन हमारे हम इमाम मूसा काज़िम कहते हैं, काज़िम उल गैज़, अपने गज़ब को मसलन दबाने वाला, मिटाने वाला, इसका मतलब ये नहीं दूसरे नहीं है। या इमाम तकी कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी इमाम तकी नहीं है। ये तमाम के तमाम अगर मुखसर कहा जाए, जिस तरह पैगंबर ने फरमाया कि अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद है, लेकिन बाकिरुल उलूम के एतबार से हम जब देखते हैं तो चूँकि वो ज़माना ऐसा ज़माना था कि जिस तरह आपके जद्द बुजुर्गवार हमारे तीसरे इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद इस्लाम के बुनियादी अकायद को महफूज करने की ज़रूरत थी तो इमाम ने कुर्बानी पेश की। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने एक नसाब बंदगी मरतब किया, उस वक्त की ज़रूरत थी और आज तक जो है इमाम का वो मजमूए कलाम जो है वो और अदिया और दुआएँ मौजूद हैं। इमाम पंजम के ज़माने से अहले बैत अतहार के पास ये वक्त पहली दफ़ा मैसर हुआ कि वो उलूम नबवी को उम्मत में मुंतशिर कर सके। तो ये वो ज़माना था, इब्तिदा थी हमारे इमाम पंजम के ज़माने में, जब उलूम यानी जिस दानिशगाह और यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं कि जो ओज पर पहुंच गई हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में, उसकी जो इब्तिदा थी वो इब्तिदा कब हुई? हमारे इमाम पंजम के ज़माने में। बहुत सारे शागिर्दान हैं जिनका ज़्यादा जो है वो तआरुफ़ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के उनवान से होता है कि उनके शागिर्दों में, उनके साहब में ज़्यादा उनका तज़किरा होता है, लेकिन उन्होंने खुद हमारे पाँचवें इमाम का भी ज़माना देखा जिसमें अबू बसीर जैसे लोग हैं, ज़ुरारा जैसे लोग हैं, मोहम्मद बिन मुस्लिम जैसे लोग हैं। तो इमाम ने इन शागिर्दों को क्या किया, तैयार किया, और फिर जब इमाम का ज़माना गुजरा और आस्ता आस्ता फिर जब छठे इमाम का ज़माना आया तो फिर बनू अब्बास उस वक्त बगावत का अलम बुलंद कर चुके थे, बनू उमैया और बनू अब्बास आपस में टकरा रहे थे, तो हमारे छठे इमाम को ज़्यादा वक्त मिला उसी उलूम के जिस की इब्तदा जो है वो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने रखी थी उसको फैलाने का। लेकिन एक यहाँ नुकता मैं अर्ज करके अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ, इमाम के इल्म के एतबार से ख़ुद जो है वो ज़ाहरी तौर पर आपकी विलायत के इकरार न करने वाले लोगों ने भी इस तरह की शहादतें दी हैं, गवाहियाँ दी हैं कि आज भी तारीख के सीने में वो उनकी गवाहियाँ मौजूद हैं। एक बहुत बड़े आलिम हैं, मैं पढ़ रहा था किताब में, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन अता। उनका ये कहना है कि मैंने उलमाए इस्लाम को, बड़े बड़े दानिशमंदों को किसी महफल में इतनी कूचकी और इकारत के साथ बैठे हुए नहीं देखा कि जितना उस महफल में कि जहाँ पर मोहम्मद बिन अली मोहम्मद बिन अली बाकरिल इल्मन नबी बैठे हुआ करते थे, तशरीफ़ फरमा होते थे यानी। और फिर वो फरमाते हैं कि बड़े बड़े जो दानिशमंद अपने आप को फ़ख्र करते थे कि हम बहुत बड़े आलम हैं, इमाम के महजर में, इमाम के हजूर में जब वो सामने पेश होते तो उनकी हालत ये होती कि जब कोई एक तिफल मकतब अपने उस्ताद के सामने बैठा हुआ होता। तो मैं यहीं पर रुकूंगा।
जी बिल्कुल, मौलाना इन्होंने जिस तरह बात की इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से और जिस तरह उन्होंने एक तालीम जो है वो मोमिनीन तक पहुंचाने के लिए, अपने फॉलोअर्स तक पहुंचाने के लिए जिसकी बुनियाद रखी, तमाम आइमा की ज़िंदगी को हम देखते हैं, उनकी शहादत मुख्तलिफ तरीक़ों से उनके दुश्मनों ने उनको उनकी शहादत की, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की यानी तमाम आइमा में से क्या खसूसियत थी कि दुश्मन इस हद तक गए यानी उसने ये कोशिश की कि इनको शहीद कर दिया जाए, यानी उनके फ़ज़ाइल जो हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन इन इमाम को शहीद करने की क्या वजह थी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम अपने नाज़रीन देखने वाले तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिम मुसलमान जितने अफराद देख रहे हैं इन सबको आज के दिन की मुनासिबत से शहादत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम पे ताज़ियत और तसीरत अर्ज़ करता हूँ, और ख़ुसूसन अपने मौला व आका इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। देखें आइमे अतहार अलैहिस्सलाम की इस शहादत के हवाले से कोई ख़ुसूसियत इसलिए नज़र नहीं आती, आप ये देखिए कि मौलाए कायनात इमाम हसन इमाम हुसैन हमारे 11वें इमाम तक आप तारीख़ मुसलमात तारीख़ में से हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता इसको, हर इमाम को शहीद किया गया। इमाम अलैहिस्सलाम के और हर इमाम को शहीद करने का जो पीछे असबाब होते थे वो तकरीबन सिमिलर थे, उनकी विलायत से डरते थे, लोगों में जो उनको फॉलो किया जाता था उनकी जो मोहब्बत थी, उनका इल्म तकवा शख्सियत, ये वो चीज़ें होती थी, हुकूमतें डरती थीं कि हमारी पास हुकूमत होने के बावजूद लोग ख़ानदान अहले बैत के वफादार हैं। आप देख लें आज भी सिर्फ शिया तो नहीं ख़ानदान अहले बैत के वफादार हैं, अहले सुन्नत में भी बहुत ज़्यादा वफादार हैं अहले बैत के ख़ानदान से, हुकूमत अपने लिए इनको थ्रेट समझती थी। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने जो है वो मदरसे की बुनियाद रखी थी, उलूम को नशर करने लगे थे, जहालत को मिटाने लगे थे, जो भी हुकाम होते हैं और हाकिम होते हैं जो जाबिर किस्म के होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी रियाया हमारी उम्मत जाहिल रहे, लिहाजा वो जाहिल रहेगी उनमें अवेयरनेस नहीं होगी, जब अवेयरनेस नहीं होगी तो वो हम उन पर अच्छी तरह से हुकूमत कर सकते हैं। अच्छा ये जहालत मैं यहाँ बता दूँ, जहालत से मुराद ये नहीं होती पढ़ना लिखना ना आता हो, यकीनन एक मिज़दाक बहुत बहुत बड़ा मिज़दाक जहालत का जो होता है वो यही होता है पढ़ना लिखना ना आता हो, जहालत से मिज़दाक हकाइक से जाहिल रहना। आज भी ऐसे ममालिक दुनिया में जहाँ पर 100% लोग पढ़े लिखे होते हैं वहाँ पे भी हुकूमतों का क्या शियार है, हुकूमतें क्या चाहती हैं, हकायक पे पर्दा पड़ा रहे, मीडिया पे वही चीज़ दिखाएं जो उनके फेवर में, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी वजह से आवाम के दरमियान तश्वीश पैदा हो जाए या आवाम में हमारे ख़िलाफ़ कोई आवाज़ हो।
अगर ये कहा जाए कि आइमा तहार के जो दुश्मन थे वो ये नहीं चाहते थे कि उस वक्त के लोगों को इमाम की मार्फत वो हासिल हो सके,
हक़ की मार्फत को नहीं चाहते थे, आइमा तहार अलैहिस्सलाम का वजूदी हक था, लिहाजा आज तक हुकूमतों का रवैया ये रहा है पूरी दुनिया में है कि वो हक से डरते हैं और मुँह चुराते हैं, लिहाजा आज भी हक छुपाया जाता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने उम्मत के दरमियान इल्म को जब नशर करना शुरू किया, मकतबे मदरसे की बुनियाद को रखा, लिहाजा हुकूमत के लिए थ्रेड हो गया कि आहिस्ता आहिस्ता ये तो जो है इमाम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर आप देखें तो ये उनका यानी कि ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ सोच रहे थे, हकीकत भी ऐसे ही थी। आप देखें छठे इमाम का जब दौर आता है तो इमाम अलैहिस्सलाम का जो मदरसा उसमें 4,000-4,500 शागिर्द हुए। मैं इमामी की ज़िंदगी से एक वाक़ा नकल कर दूं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग कितने आते थे। इमाम की खिदमत में एक शख्स आया करता था, इमाम के दर्स में आता था और वो इमाम से दर्स हासिल करता था। एक दिन इमाम से मुखातिब होकर कहता है कि आप ये ना समझिएगा कि मैं आपका मानने वाला हूँ या मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपकी विलायत रखता हूँ कि मैं आपके दर्स में आता हूँ, बल्कि मैं एक इल्म दोस्त आदमी हूँ, आपका दर्स मुझे पसंद आता है, आपके दर्स मुझे जो है लतीफ़ लगता है, उसमें ऐसे नुकात होते हैं जो मुझे कहीं नहीं मिलते, मैं आपके दर्स के हुस्न व जमाल की वजह से आता हूँ ना कि आपकी मोहब्बत की वजह से आपके दर्स में आता हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वैसे ही दर्स में आता रहा। इस वाक़े से ये तो पता चल रहा है कि लोग ज़रूरी नहीं थे कि शिया जो होते थे जो फॉलोवर होते थे वो आते थे, कि इमाम की इल्मी शख्सियत ऐसी थी हर कोई आता था। आप जाके देख लें तारीख़ के हक़ायक़ हैं, जो हमारे बरादरान सुन्नत के आइम्मा हैं वो जो शागिर्द हैं, बाज़ बिला वास्ता बाज़ बावास्ता शागिर्द हैं, तो दीगर अफराद भी आइमा से इल्म उलूम हासिल करते थे।
इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की एक उन्होंने हदीस भी बहुत अच्छी फरमाई अपने शियाओं के बारे में कि एक शिया की क्या खसूसियात हैं, और उस वाले से उन्हें 7-8 जो पॉइंट है उस वाले से वो उन्होंने जिक्र किए कि सिर्फ
यकीनन आइमा अतहार ने अपने शियों की खसूसियात बयान की, उनके शिया लफ्ज़ इस्तेमाल करना जो है वो ये नहीं कि हम शिया बस ये कह देना काफ़ी है, बल्कि عملی طور پر امام علیہ السلام آئمہ اطہار علیہ السلام کی پیروی کرنا،
اور یہ خود
وہیں
امام
شیعت
نے اپنے فالوورز کو کہا،
سب کو
ہے
تمام آئمہ نے یہ دی
بالکل.
ہے. لیکن میں اس واقعے کو کمپلیٹ کروں، یہ شخص جب مرتا ہے، یہ جوانی میں بیمار پڑ جاتا ہے، تو اس کو امام پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں شخص درس پہ کیوں نہیں آ رہا، تو کہا کہ بیمار ہے. پھر امام نے پوچھا تو کہا وہ شدید بیمار ہو گیا ہے، اور اب وہ ہو سکتا ہے حالت اعتذار میں وہ مر جائے، اور اتنے میں پتہ چلا وہ مر گیا، امام تک خبر پہنچی. امام نے اس کے گھر والوں کو اطلاع دی اور کہا کہ اس کو غسل دو، کفن نہ دینا. امام نے وہ اس کو غسل دیا گیا. امام پہنچتے ہیں، پھر اس کے برابر میں وہ اتاق ہوتا ہے. امام جاتے ہیں اور وہاں پر طولانی نماز پڑھتے ہیں اور طولانی سجدہ کرتے ہیں اپنے خدا بندے متعال سے. ادھر بھی ہمارے لیے بڑے نکات پائے جاتے ہیں کہ امام علیہ السلام کتنے متواضع تھے اپنے خدا کے سامنے، اپنے رب کے سامنے. دعا کرتے ہیں کہ اے خدا، یہ علم دوست تھا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تو اس کی روح کو پلٹا دے تاکہ یہ ولایت پر مرے اور حق پر مرے. یہ اتنے میں وہ شخص کے پاس امام جاتے ہیں، دعا کرنے بعد سجدہ طولانی کرنے میں جاتے ہیں، اور سر پہ صرف ہاتھ رکھتے ہیں، اور وہ جو ہے کلمہ پڑھتے اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مر چکا تھا، میری روح کو لے جایا جا رہا تھا، بعد میں میں نے خود آواز سنی کہ کیونکہ محمد باقر علیہ السلام نے کہہ دیا ہے، لہٰذا تم جو ہے اس کی روح کو پلٹا دو. پھر وہ جو ہے امام کے خاص شاگردوں میں شمار ہوا، امام کے شیعوں میں سے آیا، پیروکاروں میں سے آیا. یہاں پر ہمارے لیے ملتا ہے جو نقطہ بہترین ہے، وہ یہ کہ آئمہ اطہار علیہ السلام غیر بھی ہو، لیکن اگر اس میں ایک اچھی صفت پائی جاتی ہے اس کو چاہتے ہیں اپنا بنا لیں. لہٰذا وہ علم دوست تھا، امام نے اس کو اپنا بنایا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم ہیں امام والے،
بالکل.
ہم تو ہیں ان کے موالی، ہم ہیں ان کے محب، تو امام کتنا چاہتے ہوں گے کہ ہم ان کی اطاعت گزار بنیں، ہم ان کے پیروکار بنیں، ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں. نہ صرف ہم یہ کہ ہم تو شیعہ ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام کے ہم شیعہ ہیں، امام علی علیہ السلام کے، یہ کافی نہیں ہے، خالی دعویٰ کافی نہیں ہوتا، دلیل بھی آئمہ اطہار چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح،
یعنی
سے
صرف زبانی کلام سے جو ہے وہ کام
کافی
نہیں چلے گا، عملی طور پر بھی ہمیں اس
دوران
جو ہے وہ ہمیں مولانا نیاز حسین نقوی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے آگا، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور آپ کی خدمت میں بھی تعزیت پیش ہے آج کی شہادت کے حوالے سے. اس کے علاوہ مولانا آپ نے جو ذکر کیا امام کی شہادت کے حوالے سے، مولانا نیاز نقوی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں جو ہے امام کی شہادت سے ہمیں آج کیا سبق سیکھنا چاہیے، کیونکہ جس مقصد اور سبب کے تحت ان کی شہادت ہوئی، آج کے شیعہ جو ہیں ان کے لیے کیا سبق ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں تعزیت عرض کرتا ہوں. دیکھیں، آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت یا ولادت کے جو پروگرام ہم انجام دیتے ہیں، ان کا ایک خاص مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بہانے سے ان کا تذکرہ ہو، ان کے امر کو زندہ کیا جائے، جس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ جب ہمارے چاہنے والے آپس میں بیٹھتے ہیں اور ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، ہماری گفتگو کرتے ہیں، ہمارے احادیث کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، تو آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام اس کام سے خوشنود ہوتے ہیں، اور ان مجالس اور مجالس اعضاء کے برپا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان مجالس کے ذریعے سے آئمہ کا ذکر زندہ رکھیں، اور ان کے ذکر زندہ رکھنے کے ذریعے سے اسلام زندہ ہوتا ہے اور دین زندہ ہوتا ہے. وہ دوسری وجہ خاص طور پر جو عزاداری کے حوالے سے ہے کہ آئمہ معصومین کی شہادت کے سلسلے میں ہم عزاداری کرتے ہیں، مجالس کو برپا کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مجالس کا جو ایک پہلو ہے مصائب کا، اور معصومین کے مصائب کو ذکر کرنے کا جو ایک پہلو ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے مصائب کو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ان سے محبت اور ان سے ہمدردی اور ان کی الفت ہمارے دل میں اور زیادہ جوش میں آتی ہے، اور زیادہ مضبوط ہوتا رشتہ معصومین علیہ السلام سے. مجالس کیونکہ جہاں مجالس میں عقلی اور علمی اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، وہاں مجالس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اندر جو محبت ہے اہل بیت علیہ السلام سے، اس کو بھی مضبوط کیا جاتا ہے، اس کو بھی ابھارا جاتا ہے، ایک احساساتی پہلو ہے. تو لہٰذا جب امام معصومین کے مصائب پڑھے جاتے ہیں تو جہاں ان کے ماننے والے متاثر ہوتے ہیں ان کے مصائب سے، وہاں جو بھی انسانیت سے دوستی رکھتا ہے اور ظالم سے نفرت رکھتا ہے، تو ان کے ذکر مصائب سے उनके दिल के अंदर भी आईमा मौसूमी अलैहिस्सलाम से एक लगाव पैदा होता है, एक उल्फत पैदा होती है, क्योंकि वो भी देखते हैं कि इनके ऊपर जुल्म हुआ, इनके ऊपर मसायब डाले गए। लिहाजा आईमा मौसूमी का जिक्र मजालिस में और उनके वफात के सिलसिले में या शायद विलादत के सिलसिले में होना चाहिए, ताकि ये उनका जिक्र जो है दीन
और जो है वो चलता रहे आज़ादारी का।
जी
मौलाना अली रज़ा रिज़वी साहब, आपको मैं खुश आमदीद कहूँगा स्टूडियो में। मजलिस उलमा शिया यूरोप के मरकज़ी सदर हैं और आगा आपको सबसे पहले ताज़ियत पेश करूँगा। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से हमने गुफ्तगू की, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी सीरत के बारे में जितनी भी गुफ्तगू की जाए कम है। प्रोग्राम में मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद मैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आना चाहूँगा कि मजलिस उलमा शिया यूरोप के हवाले से जो हमने खसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया, उस हवाले से अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 हफ़्तों में जो मुख्तलिफ कन्वेंशन मुनाकिद हुए मुख्तलिफ शहरों में, उस हवाले से आप क्या अपडेट्स देना चाहेंगे?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपने तमाम नाज़रीन सामईन और तमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वालों को बेमुनासबत शहादत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ताज़ियत पेश करता हूँ। मजलिस उलमा शिया यूरोप का ये जो नया जो टेन्योर था, इसके अंदर हमारी काबीना का फ़ैसला था कि इसमें हमारा जो ऑर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, तंजीम साजी का जो अमल है, वो मुकम्मल होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उस तंजीम साजी के अमल को तकमील तक पहुंचाने में कुछ लोकलाइज्ड कन्वेंशन की ज़रूरत थी। हमने पूरे यूके को 5 जोन्स में तकसीम किया और वो जो 5 जोन बने हैं उसके कह लें कि लंदन इसके अतराफ़ का उनका उसका जो नाम है वो जाफर तैयार जोन है, उसका वो कन्वेंशन हुआ लास्ट संडे को इदारा जाफरिया लंदन में। इसी तरह से उससे पहले जो है वो अबू दर गफ़ारी जोन का कन्वेंशन हुआ है जामतुल मुंतज़र
मैनचेस्टर में,
और उससे पहले जो है वो अम्मार यासिर जोन है, उसका कन्वेंशन हुआ स्लाव में। तो यानी ये इधर जो बारगाह है
बैतुल क़ायम सेंटर
अल-क़ायम इस्लामिक सेंटर में। तो बहर अल्हम्दुलिल्लाह ये कन्वेंशन, और इस हमारा जो है 20th को अगला जो हमारा संडे आ रहा है उसको ग्लासगो में अलहुदा सेंटर के अंदर ग्लासगो में हमारा कन्वेंशन है अम्मारे सलमान फ़ारसी जोन का, और उसके बाद फिर 26 अक्टूबर को हमारा 5वां और आखिरी कन्वेंशन है सिलसिले का इस साल का, जो कि लूटन में होगा, वो मालिक अश्तर जोन का है बर्मिंगम और उसके अतराफ़ के जितने मिडलैंड्स के सेंट्रल ईस्ट मिडलैंड्स वेस्ट मिडलैंड्स लूटन से लेकर नॉटिंगम तक तमाम इमाम बरगाहों का वो कन्वेंशन है। इन कन्वेंशन का हदफ ये था ऑर्गनाइजेशन तंजीमी ये कन्वेंशन थे कि इसके अंदर तमाम के तमाम इमाम बारगाहों को दावत दी जाए, इमामिया काउंसिल के उसके जो आज़ा हैं, इमामिया विमेन के जो आज़ा हैं, इमामिया यूथ के, तो उन सबको बाकायदा कोई ना कोई अपॉइंट किया जाए उसके लिए, और फिर आपस में एक कम्युनिकेशन जो हमारा गैप है उसको उसको फिल किया जाए। उसमें हमारे जो मरकज़ी 3 कोऑर्डिनेटर्स हैं उन लोगों ने वहाँ पर उनका तारुफ भी था, और उसके साथ साथ उनका फिर आगे आइंदा का प्लान और आइंदा का मनसूबा बंदी। तो तकमील साज ये हमारा बेसिकली तंजीम साजी का हमारा जो है प्रोसेस वो अपने अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म पे आ रहा है, और इसके बाद फिर हम चाहते हैं कि आइंदा की हमारी जो प्लानिंग है अगले 6 महीने की 2014 के 6 महीने, तो उसमें मुहर्रम सफ़र में हमारे कुछ हैं, और उसके बाद फिर जनवरी से शुरू होगा फरवरी में उलमा कैंप है, उसके बाद फिर अप्रैल में हमारा एक फैमिलियों के लिए हमने रखा है एक हम विल्स में के करीब जगह ले रहे हैं ली है, उसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा अफराद के लिए एक कैंप रखा है हम लोगों ने, उसमें £90 पर हेड खर्चा आएगा, उसमें हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होंगी, लेकिन ज़्यादातर जो है हमारा फोकस होगा वर्कशॉप्स के ऊपर, जो इमामिया विमेन इमामिया काउंसिल इमामिया यूथ के हवाले से हम मुख्तलिफ वर्कशॉप्स रखेंगे, नौजवानों की अलग होंगी, ख़वातीन की अलग होंगी, मर्दों की अलग वर्कशॉप्स होंगी,
यानी पूरे फैमिली के लिए जो है वो आप
फैमिलियों के लिए है, और फैमिलियों के साथ साथ फिर जितने हमारे जो तंजीमी कारकुन हैं और फिर जितने भी इसमें आइंदा हिस्सा लेना चाहते हैं उनकी तरबियत के हवाले से कि भाई क्या हम काम करना चाहते हैं और वो किस तरह से इसके अंदर क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह ताला आगे हमारे और फिर हमारे
अगर आपने जो जिक्र किया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उसको आपने जो एक एजेंडा सेट किया उसमें आपको कितनी अचीवमेंट जो है अभी तक जो है वो हुई है?
देखिए 2 साल से हम लगे हुए थे, 2-2.5 साल हमने पहले पूरे यूके के दौरा जात किए, 2 हमारे दौरे हैं पूरे यूके के, और फिर हम लोगों ने तमाम मराकज़ के अज़ा को इमाम काउंसिल का मेम्बर बनाया, इस तरह से फिर हमने 2 नए शोबे बनाए इमाम विमेन इमाम यूथ का, फिर इतना ही नहीं बल्कि हमने उनके सेंट्रल कोऑर्डिनेटर्स बनाए और फिर आगे हमने सेंट्रल कोऑर्डिनेटर्स के साथ साथ हमने जोन बनाए बाकायदा, उसको तकसीम बंदी की, हमने उसके पूरे यूके को 5 हिस्सों में तकसीम किया ताकि फिर हमारे लिए मैनेजमेंट उसकी आसान हो जाए। किसी भी काम करने वाले के लिए एक पहाड़ के सामने उसको खड़ा कर दिया जाए कि ये पूरा पहाड़ आपको सर करना है, मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमने क्या किया कि उसको पूरे यूके के लिए 60-70 सेंटरों से रابطہ करना और उनके लिए बरनामरीजी करना ये आसान नहीं था, तो हमने उसको क्या किया, तकसीम कर दिया 5 जोन्स के अंदर, ताकि फिर 5 जोन के लिए मनसूबाबंदी, उनके लिए मिलना, मीटिंग्स, उनके लिए उमूर का तंजीम करना आसान हो जाएगा। और फिर हमने सबसे पहले आने के बाद उन पाँचों जोन्स के लिए हमने कहा कि 5-5 कोऑर्डिनेटर्स हों, एक इमामिया, एक मजलिस उलमा की तरफ से आलिम दीन कोऑर्डिनेटर हो, एक इमामिया काउंसिल का कोऑर्डिनेटर हो, एक इमामिया वेमेन की कोऑर्डिनेटर हो, और 2 इमामी यूथ के हों, एक लड़का अलग हो, लड़कों के अलग हमने डिपार्टमेंट को रखा और लड़कियों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आने के बाद जो कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं और अभी हमारा जो है वो फाइनल अपने मरहले के अंदर है, जिसके अंदर हम चाह रहे हैं कि हर इमाम बारगाह को एक हर इमाम बारगाह से हमारे पास इमामिया वेमेन, इमामिया काउंसिल, इमामिया यूथ के कोऑर्डिनेटर्स मौजूद हों, 4 अफराद। आलिम दीन का हमारा मेम्बर है और बाकी 4 अफराद हमारे मेंबर बने। ये तंजीम सादी का है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हमने हदफ़ रखा था वो 80% से ज़्यादा हमने अचीव किया, और हमारे पास अभी 2 महीने बाकी हैं, यानी अक्टूबर का पूरा महीना है हमारे पास, फिर दिसंबर में इंशाल्लाह, फिर नवंबर में मुहर्रम वगैरह, उसमें हमारी मसरूफियात ऐसी होती हैं, तो हम इंशाल्लाह ताला इसको अचीव भी करेंगे और ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
बिल्कुल आगा, इससे मैं अगला सवाल जो आपसे करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर एहसान साहब की तरफ आना चाहूँगा। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो मिल्लत तशय्यो जो इस वक्त बरतानिया में रह रहे हैं, उनके मुख्तलिफ़ तबकात जो कि जवान हो गए, ख़वातीन हो गई और मर्द हज़रात, उनके लिए अलहदा अलहदा जो कोई तरबियत सेंटर या इस तरह आप कुछ आपके जहन में है कि आप क्या कर रहे हैं उनके लिए?
ये मैं करेक्ट करवा दूं आपको,
लेकिन आपके दोनों बेटे डॉक्टर हैं
अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं देखें, ये अभी हमारा इनिशियल फेज से हम गुजर रहे हैं जहाँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, जैसा मौलाना आगा ने अर्ज़ किया, उसमें यह है कि हर यूथ का प्रोग्राम होगा, उसको डेवलप करेंगे, हर जैसा मिसाल के तौर पर एजुकेशन पर हम इस वक्त काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं, नर्सियों पर ज़ोर दे रहे हैं, और पॉलिटिक्स साइड पर हम बातें कर रहे हैं। ये अभी इब्तिदा में है अल्हम्दुलिल्लाह। हम ख्याल से अगर आप पिछली हिस्ट्री उठा के देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 4-5 साल में हमने काफ़ी तरक्की की है, हम एक स्टैंड पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ मैं समझता हूँ कि यहाँ हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अब हम यहाँ से जंप स्टार्ट शुरू कर सकते हैं। तो काफ़ी प्रोग्राम इसमें हैं, जैसा मैंने अर्ज़ किया, पॉलिटिक्स साइड पर, एजुकेशन साइड पर। हमारा जो प्राइम इमामिया काउंसिल का इस वक्त जो हमारा एम है वो ये है कि हर इमाम बारगाह एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाए। अभी तक ये होता रहा है कि हम अपने पर्सनल लेवल पे, जैसे एहसान रज़ा एक्स वाई जी को जानते हैं और हमारी बातचीत रहती है इमाम बारगाह में, हमारी कोशिश ये है कि कमेटियाँ मिलकर आपस में रेगुलर मिलते रहें, तो इससे ये होगा हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस सीखेंगे, एक दूसरे से तजुर्बे सीखेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। जो एक और इसके आगे यह है कि आगे हमारा मकसद यह है कि इन सारी एक्टिविटीज़ से हमारी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचे। तो उस लिहाज से जो हमारी थिंकिंग इस वक्त यह है कि हर इमाम बारगाह में एक ट्रेड्स का लिस्ट हो कि हमें कोई भी ज़रूरत पड़े, चाहे वो प्लम्बिंग की हो, प्रोफेशनल हो, बैंकिंग की हो, मॉर्गेज की हो, या लाइट इलेक्ट्रिसिटी, हमारे अपने बंदे को हम बुला सकें, काम करवा सकें। वरना तो हम करवाते रहते हैं और हम गैरों को सस्पेंड कर सकते हैं, ये बहुत सारे कौमों में होता है, तो हमारे में क्यों नहीं है? उसके लिए हम बेसिस तैयार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जब हम इस पर काम करेंगे 2-4 साल में जाके इससे फ़ायद बहुत उभर के आएंगे। आप आज नहीं देख सकते फ़ायद, एक तंजीमी दौर से आपको गुजरना पड़ता है, क्योंकि जब आप ये करने लगते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं उनमें भी हर आदमी की क्वालिटी अवेलेबल है, और हर आदमी ये चाहता है कि हमें अच्छी क्वालिटी मिले, उसके लिए पैसे भी लोग देने तैयार होते हैं। तो हम एक फेस फिल्टरिंग फेस से गुजरेंगे,
जिस तरह आपने जिक्र किया कि तमाम इमाम बारगाहों में जो है एक रब्त कायम कर देंगे, तो जब रब्त कायम हो जाएगा तो ये जो इस तरह की एक्टिविटीज हैं वो खुद ही
पार पाएंगे।
बिल्कुल। मौलाना अली रिजवी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पोलिटिकली जिस तरह अभी एहसान रजा साहब ने जिक्र किया, पोलिटिकली एजेंडा जो आपने सेट किया है फ्यूचर में मजलिस उलमा के लिए, उसके ऊपर आप क्या रोशनी डालेंगे?
देखें, कुछ चीज़ें हम प्रीमेच्योर, बहुत सी चीज़ें डिक्लेयर करना नहीं चाहते, लेकिन उस पर हमारा एक पूरे यूके के हमने जो शिया पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ हमारी मीटिंग्स हो रही हैं आइंदा आने वाले दिनों में, और हमारे काफ़ी काउंसलर्स हैं, हमारे मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं, तो हम एक तो चाहते हैं कि खुद उनका आपस में एक लिंक होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, खुद शिया लीडरशिप का जो है उनके साथ लिंक होना चाहिए। नंबर तीन, हमारे जितने भी लोकल सतह के, हमने लीडरशिप को तीन हिस्सों में तकसीम किया है। एक है मरकज़ी पूरे यूके के लिए, मरकज़ी यूरोपी, और दूसरे लेवल पे है कि हमने जोन वाइज, और तीसरे जो है वो फिर इमामबरगाहों की लीडरशिप है, ये हमारी लोकलाइज बिल्कुल जो शहरों की और मोहल्लों की जो लीडरशिप है उस तक, और फिर ग्रास रूट लेवल तक। तो हम चाहते हैं कि हम ग्रास रूट लेवल तक रीच आउट करें, हमारी पहुंच जो है वो पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप से लेके बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक सब कनेक्टेड होने चाहिए,
बिल्कुल,
सियासी लिहाज से, इज्तिमाई लिहाज से, तालीमी लिहाज से। फिर इसी का कनेक्शन जो बनेगा इक्तसादी भी बनेगा। अभी हमने तालीमी लिहाज से ठीक ठाक हम काम कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी हमने काफ़ी इस पर किया, लेकिन उसके नतायज जिस तरह से एहसान भाई ने कहा, हम लोग जो कर रहे हैं ये हमने दो साल में किया तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। किसी भी चीज़ को हासिल करने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। जब इंसान ये सोचने लगता है फिर वो आगे की तगोदो बंद कर देता है। तो इसलिए मेरा अपना पर्सनल जो नज़रिया है वो ये है, अपनी पूरी जो टीम है, चाहे वो काबीना हो चाहे एक्सटेंडेड, जो हमारी मरकज़ी काबीना के अलावा जो हमारे मरकज़ी कोऑर्डिनेटर्स हैं, फिर उसके बाद एक्सटेंडेड जो हैं वो हमारे जोन, हम सब यही मुसलसल एक चीज़ को दोहरा रहे हैं कि ये अभी अव्वलकार है, ये हम बिल्कुल इब्तदा में हैं। तो इंशाल्लाह ताला उसके आपको नतायज जब नज़र आएंगे तब फिर आप लोग समझेंगे कि हम लोगों ने क्या अचीव किया। मैं बात चीज़ें प्रीमैच्योर हमारे लिए भी डिक्लेयर करना मुनासिब नहीं है, लेकिन हम एक जो एक प्लान कर रहे हैं और जिस तरह से हम एक सबके अंदर एक कोऑर्डिनेशन पैदा कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला एक खुद उसका कोई साबका नहीं है, ना यूके के अंदर, ना ही इस तरह से मैं समझता हूँ कि और जगहों पे यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका वगैरह में, हत्ता बहुत ऐसी जगहों पे जहाँ पे शियों की तारीख जो है वो 100-150 साल से ज़्यादा यानी कम है, वहाँ पे आपको इसकी हिस्ट्री नहीं मिलेगी जिस तरह से इंशाल्लाह ताला ये उसके नतीजे आएंगे
इंशाल्लाह। मौलाना, आगे चल के हम मुख्तलिफ और भी टॉपिक्स हैं, जिस तरह ईद कुर्बान के हवाले से है उस पर भी गुफ्तगू की जाएगी, इसके अलावा नाज़रीन हज के मौके के हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी, आप भी कॉल कर सकते हैं और उलमाए इकराम से अगर कोई कुर्बानी के हवाले से या हज के हवाले से जो भी आपके क्वेश्चंस हों आप कॉल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन उलमाए इकराम से आपको एक मुस्तनद और हकाइक पर मबनी जो जवाबात हैं वो आप तक पहुँचाए जाए। मौलाना हसन अब्बास रिज़वी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि जिस तरह हम ईद कुर्बान की जानिब बढ़ रहे हैं और हज के मौके की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस मौके पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक आयत जो कुरान मजीद में कि खुदा ताला तक जो है वो ना गोश्त पहुँचता है और ना ही खून पहुँचता है, बल्कि तकवा और परहेजगारी जो है वो देखी जाती है, तो इस मौके पे मैं आप पूछना चाहूँगा कि ये परहेज़गारी और कुर्बानी में किस किस्म का रब्ता है, यानी कुर्बानी करके खुदा ताला किस किस्म का तकवा और परहेज़गारी अपने बंदे से चाहता है?
बेशक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये कि असल में कुर्बानी का एक बैकग्राउंड है, कुर्बानी का बैकग्राउंड जो है वो ये है कि हज़रत इब्राहिम अला नबी नवा अली अलैहिस्सलाम से खुदावंद मुताल ने उनके फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी थी। उस कुर्बानी की याद को ताज़ा रखने के लिए जानवरों को कुर्बान किया जाता है कि उस वक्त भी एक जानवर कुर्बान हो गया था और हज़रत इस्माईल को हटा दिया गया था। इसका पस मंज़र कुर्बानी का ये है कि वो हज़रत इब्राहिम जो एक उलाज़म नबी भी हैं, रसूल हैं, उन्होंने जितनी बड़ी कुर्बानी दी थी, अल्लाह चाहता था कि मेरे रास्ते में अपने बेटे को कुर्बान करने तैयार था, लिहाजा उस सुन्नत को, उसकी इस याद को याद रखा जाए, इसलिए इसका ताल्लुक़ तकवे से बनता है। लेकिन अफसोस ये है कि अगर हम देखें, जैसे हर चीज़ के साथ ये होता है, हर दीन के साथ ये होता है, हर मज़हब के साथ, हर वाक़े के साथ ये होता है कि कुछ अरसे के बाद वो चीज़ रस्म और रवाज में तब्दील हो जाती है, उसकी रूस में से ख़त्म होती जाती है और उसका ज़ाहरी चेहरा बाकी रह जाता है। ये जो तकवे की तो अल्लाह ताला कहना ना गोश पहुँचता ना खून पहुँचता, ये इसलिए कहा था कि जानते थे जो कुर्बानी करने वाले होंगे, इनके जो एम्स होंगे, इनके जो असबाब होंगे कुर्बानी करने के, वो कुछ और होंगे। मतलब घर के बाहर बैल सिर्फ इसलिए बांधा जाएगा ताकि पता चले कि हमने इतने लाख का बैल ख़रीदा है। बोली लगाई जाती है, बाकायदा नमूद व नुमाइश की जाती है, अच्छा उनके दो बैल हैं तो हम तीन करेंगे, उनके 22 हैं तो हम 30 करेंगे, ये बाकायदा रकाबत होती है इस मसले में। खुदा बंदे मुताल ये नहीं चाहता था कि तुम 100 बैल भी अगर कुर्बान कर दो, गोश्त तो मेरे पास नहीं आने वाला अगर उसमें तकवा नहीं है, और अगर तुम एक बकरा भी कुर्बान करोगे लेकिन तकवे के साथ करोगे तो वो तुम्हारा काबिल कबूल है, वो पहुंचेगा मुझ तक। वाकई इस गोश्त खून का अल्लाह को क्या करना है? तो अल्लाह असल में इस तरफ इंसान को मुतवज्जे करना चाहता था कि नबी की एक सुन्नत बाकी रहे, उस नबी की याद बाकी रहे, उनका जो लेसन था, उनका जो दर्स था, उनकी जो कुर्बानी थी वो बाकी रहे, وہ اصل وہیں تھی، تقوی پہ مبنی تھی، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنی تھی، اللہ کے حکم پہ اوپر اطاعت کرنی تھی، لہٰذا اس کو باقی رکھنے کے اللہ نے چاہا کہ یہ تا قیامت یہ چیز باقی رہے، لیکن لوگ کہیں اس قربانی سے گوشت اور خون اور وزن اور اس کی شکل و صورت کی طرف نہ پھر جائیں، اس لیے اللہ نے اس کو ڈینائی کیا. لیکن افسوس کے ساتھ کہ ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں یقیناً دل سے قربانی کرتے ہیں، اسی نہیں کہا جا سکتا، یقیناً بڑی تعداد جو مسلمانوں میں ہے وہ قربانی جو کرتی ہے دل سے کرتی ہے اور اللہ کے لیے کرتی ہے، اللہ کی خوشنودی کر رہی ہے، سنت سمجھ کے اس کو کرتی ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. ان کے لیے اس قربانی کے حوالے سے یہی ہے کہ یہ پیسہ بھی ان کا ضائع ہو رہا ہے اور خداوند متعالکہ ان کو ثواب بھی نہیں مل رہا.
بالکل آگا جی، جو آپ نے ذکر کیا کہ مقصد جو ہے قربانی کا بالکل خالص ترین تقوی کی جو ہے وہ بنیاد پر ہے، لیکن کیا مسئلہ ہے کہ آج کے دور میں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کچھ رسومات کی وجہ سے ہم اپنے مقصد سے دور ہو گئے ہیں، جس طرح کہ خدا تعالیٰ نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کچھ نہیں پہنچتا لیکن تقوی.
وہی مسئلہ بتایا کہ بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اکثر جو ہے ظاہرداری میں پڑ جاتا ہے، ظاہر انسان ظاہر کا جو مانوس جلدی ہوتا ہے، نسبت وہ معنویت سے مانوس دیر سے ہوتا ہے، ظاہر چیزوں سے مانوس زیادہ ہوتا ہے، انسان اس بات سے امپریس کم ہوتا ہے کہ کون کتنے تقوی کی بنیاد پہ قربانی کر رہا ہے، اس چیز سے زیادہ امپریس ہو جاتا ہے کہ اچھا ان کے چار بکرے ذبح ہو رہے ہیں، ان کے ایک بیل جو 1.25 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 5 لاکھ کا بیل ہے وہ ذبح کر رہے ہیں، لوگ اس سے مرعوب ہوتے ہیں. تو جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور نمود و نمائش بھی ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، لہٰذا یہ نہیں پڑھنا چاہیے. حقیقت یہی ہے کہ جو روح جو ہے قربانی کی وہ یہی ہے کہ صرف اللہ کے لیے تاکید ہے، یہ سنت موقعہ ہے، لہٰذا اللہ کی خوشنودی کے لیے، جناب ابراہیم کی سنت کو باقی رکھنے کے لیے، ان کی سیرت کو زندہ رکھنے کے لیے، اس عظیم واقعے کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں قربانی کرنا چاہیے.
بالکل.
اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی محلے والے سے، رشتہ دار سے، یا کسی فرد سے، یا کسی پیسے والے سے،
یعنی رسم و رواج اور نمود و نمائش سے بالکل ہٹ کر بالکل اپنا جو مقصد ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہونا چاہیے. مولانا عظمت عباس صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک قربانی کا جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ تو بعض ناظرین جو ہیں ان کی معلومات میں جو ہیں وہ کچھ جس طرح شرائط ہیں قربانی کی، اگر آپ وہ ناظرین کی خدمت میں مختصر سے وقت میں پیش کر دیں کہ کیا شرائط ہیں کہ ایک کن چیزوں پر قربانی ہو سکتی ہے اور کن چیزوں پر نہیں.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس پر مزید گفتگو فرمائیں گے مولانا صاحب. ایک یہ جو مولانا بھی اس موضوع سے متعلق گفتگو کی ہے، ایک میں تھوڑا سا اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں خداوند منان جس طرح جس آیت کی طرف آپ نے بھی یہ اشارہ کیا کہ انسان کا جو تقویٰ خدا تک پہنچتا ہے، قربانی کا یہ بالخصوص بہت عظیم ایک جو ایک ہمارے دین میں سلسلہ ہے عید الاضحیٰ میں، وہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ جو ہے قربانی کریں. اصل اس کی جگہ منا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہے مستحب جو ہے کہ آپ جس وطن میں رہتے ہیں وہاں پر بھی قربانی کریں. واقعی یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر بہت کچھ بولنے کی ضرورت ہے، جس طرح کہ پورے اسلام کے ہر تعلیمات اسلامی میں سے مختلف جو تعلیمات ہیں ان کا جس طرح یہ مسئلہ ہے کہ ہم ان کی روح اور اصل اس کا جو فلسفی ہے نہیں سمجھتے، اسی طرح اس کی بھی ہم فلسفی نہیں سمجھتے. بعض اوقات تک کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں، وہ اس میں ایک اٹریکشن ہمیں نظر آتی ہے جی کہ غریبوں کو گوشت کھلانا ہے، اس میں غریبوں کو گوشت ملتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. حتیٰ کہ یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں اس قربانی اس لیے کروائی جاتی ہے کہ غریبوں کو گوشت کھلایا جائے. آپ نے دیکھا ہم میں سے چھوٹا بڑا آگاہ ہے کہ بالخصوص قربانی کے گوشت کے حوالے سے مثلا جو عام مشہور ہے ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے کہ 3 حصے کیے جاتے ہیں، گھر میں رکھا جاتا ہے دوستوں کو، اس میں غریب ہونا بھی شرط نہیں ہے کہ جو کھائے وہ غریب ہو، یہ کوئی صدقے کا گوشت نہیں ہے.
بالکل.
تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سلسلہ قائم کیا ہے کہ جی جو غریب ہیں ان کو گوشت کھلانے کے لیے یہ سسٹم شروع کیا ہے. یہ اس کا فائدہ ہے، یعنی کہ ایک سیکنڈری فائدہ ہے اس کا کہ اچھا ہے چلو آپ ایسا کریں کہ جب آپ ذبح کریں تو کوشش کریں کہ آپ غریب کو. اب بعض کی چونکہ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ جی مثال کے طور پر یہاں پر کوئی غریب نہیں ہے تو پاکستان میں ہے تو یہ وہ، ان کی نظر زیادہ یہ ہوتی ہے کہ یہ گوشت جو ہے وہ اس لیے ہم سے جانور کٹوائے جا رہے ہیں کہ ہم غریبوں کا غربا، یہ غرباغ والے تصور ہی نہیں ہے اس میں، قربانی میں غریب کا تصور ہی نہیں ہے، وغیرہ جو ہے بلکہ مستحب ہے، یہ استحباب موقد ہے کہ آپ قربانی کا گوشت خود آپ چکھیں، اگر دل نہیں بھی کر رہا تو پھر بھی اس میں سے کچھ کھائیں، تو لہٰذا وہ صدقے والا تصور نہیں ہے. پہلے یہ بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں میں نے جس طرح یہ کہا کہ مصر وقت میں اس میں سہرہ سلباس البتہ نہیں ہو سکتی. دیکھیں جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرزند کو بے حکم خدا جب ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور چھری چلا دی, چھری نہیں چلی, یہ نہیں چلی, نہیں چلی, لیکن حضرت ابراہیم نے چلا دی, انہوں نے اسماعیل کو ذبح کر دیا. یعنی جناب ابراہیم نے ذبح کر دیا, یعنی جو ان کا عزیز تھا, یعنی اس کائنات میں جو عزیز ترین جو مخلوق تھی ان کے پاس اس وقت وہ جناب اسماعیل تھے.
کہا جاتا ہے کہ کافی طولانی انتظار کے بعد ان کو یہ اولاد جو ہے وہ نصیب ہوئی تھی,
یعنی محبوب ترین چیز تھی ان کے خدا کی عطا کردہ تھی, انہوں نے خدا کے حکم پر اس کو اپنے اسماعیل کو انہوں نے قربان کر دیا.
آگاہ ہمارے پاس بہت معذرت کے ساتھ یہاں پہ ایک نیوز بریک کا وقت ہوا ہے, انشاءاللہ ہم یہ حج کے حوالے سے اور قربانی کے حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نیوز بریک کے بعد.